आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। राज्य में मतदाता सूची को तैयार करने के लिए आयोग ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया था। 3 महीने की इस कवायद के बाद 68 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, जबकि लगभग 21.5 लाख नए मतदाता भी सूची में शामिल किए गए हैं। विपक्षी पार्टियों ने ऐन चुनाव के पहले SIR की प्रक्रिया शुरू करने का विरोध किया था। इसको लेकर चुनाव आयोग के साथ ही केंद्र सरकार और भाजपा पर भी निशाना साधा जाता रहा है। केंद्रीय मंत्री और LJP रामविलास के नेता चिराग पासवान ने सरकार का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ अच्छा या बुरा हुआ है उसके लिए जिम्मेदार चुनाव आयोग है।
केंद्र सरकार का क्या लेना देना है SIR से? आएगी, आपको कोई शिकायत होगी, कुछ अच्छा लगेगा, अच्छा भी चुनाव आयोग के सर, शिकायत होगी तो भी चुनाव आयोग के सर।
राज्य के विधानसभा चुनाव में SIR एक मुद्दा है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने अत्यंत पिछड़ी जातियों को गोल बंद करने की कोशिश भी की है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस जाति समूह के उत्थान के लिए एक 10 सूत्री प्रस्ताव भी सामने रखा है। चिराग पासवान जातियों के आधार पर गोलबंदी को अनुचित बताते हुए कहते हैं,
मेरे लिए बिहारी बिहारी है। मैं बात करूंगा तो 14 करोड़ बिहारियों की बात करूंगा, बिहार फर्स्ट की बात करूंगा, बिहारी फर्स्ट की बात करूंगा, और यही सोच ने बिहार को बर्बाद किया। आज आप अपने आप को आप 21वीं सदी का बोलते हैं और ये आप सोच रखते हैं कि भैया किसको हम किस जाति में हम बांट के देखें और कौन किस जाति का वोट बैंक बनना चाहता है और कौन किस जाति को अपना वोट बैंक बनाना चाहता है। इसी सोच ने तो बिहार को बर्बाद किया है। आप बताइए, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप अपने आप अभी भी आप लोग इसी तरीके का वोट बैंक बना के आप सोचने की बात कर रहे हैं।
बिहार की राजनीति में उतरी जनसुराज पार्टी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। पार्टी ने सत्ताधारी NDA के कई बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार और अपराध के आरोप लगाए हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ कुछ दस्तावेज भी पेश किए गए हैं। जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने इन मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
बिहार के साथ ही नहीं, ये पूरे देश के साथ, हमारे देश के संविधान के साथ एक बहुत क्रूर मजाक है कि ऐसे व्यक्ति हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और हैरानी इस बात की है कि शायद अनजाने में हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जब आते हैं तो उनके साथ सम्राट चौधरी साहब घूमते हुए दिखे जाते हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत दुखद है।
लद्दाख में हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर जाने माने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर कई आरोप लग रहे हैं। उन्हें NSA के तहत गिरफ्तार कर जोधपुर जेल में रखा गया है। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि एंगमो ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। मंगलवार को नई दिल्ली में गीतांजलि ने प्रेस वार्ता करते हुए आरोपों पर कहा,
ये एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट किया जा रहा है सोनम को डिफेम करने के लिए, ताकि उनके अगेंस्ट ये नैरेटिव बना के जो उनका 6th शेड्यूल का मूवमेंट है उसको वीक किया जा सके।
सोनम के पाकिस्तान जाने को लेकर उठने वाले सवाल पर गीतांजलि कहती हैं,
सोनम ने पाकिस्तान में जाके एक कॉन्फ्रेंस किया, मेरा प्रश्न ये है कि उसमें क्या गलत है? अभी अगर उसको यूज करके उनका कुछ और मतलब निकाला जा रहा है कि कोई पाकिस्तानी लद्दाख में उनको दिखा, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि आपने कैसे ये सेफ्टी प्रोटोकॉल ब्रीच होने दिया? ये सोनम वांगचुक को रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये MHA को रिप्लाई करने की ज़रूरत है कि क्यों कोई पाकिस्तानी लद्दाख में दिखा।
इधर जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को गलत बताया है।
हर तरह से काउंटर प्रोडक्टिव होगा, बिल्कुल अनफेयर है, बिल्कुल मैलाफाइडी है, और मैलाफाइडीज इतनी सारी चीजों से एविडेंट है, जिस तरह का सोशल मीडिया कैंपेन BJP वालों ने चलाया है उनके खिलाफ।
तमिलनाडु के करूर में हुए भगदड़ के मामले में राजनीति तेज हो गई है। 27 सितंबर को तमिल सिनेमा के सुपरस्टार विजय थलपति की राजनीतिक रैली में भगदड़ मचने से 41 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। सिनेमा से राजनीति में आने वाले विजय ने इसके पीछे साजिश की आशंका जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री स्टालिन पर निशाना साधा है। विजय ने उम्मीद जताई है कि सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। प्रशासन का कहना है कि रैली में अनुमान से दुगनी भीड़ आई, इसके बाद से अव्यवस्था फैल गई थी। सरकार का दावा है कि रैली के दौरान नियमों का उल्लंघन किया गया। इस बीच विजय की पार्टी टीवीके के 14 कार्यकर्ताओं को अब तक न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। इधर भाजपा सांसद हेमा मालिनी की अगुवाई में 8 सांसदों का दल मंगलवार को करूर पहुंचा। हेमा मालिनी ने इस भगदड़ को सबसे बड़ा राजनीतिक हादसा बताते हुए कहा,
It's such a horrible and a biggest stampede which has happened, which has never happened in the history of politics, I would say that. Because normally political rallies are done in a very proper way and proper security is given and then normal stages are put and then the artist or whoever goes there, the leader, they talk there and then people are sitting in a comfortable place. That the administration should have taken care of that, which they failed to do it, that's what I feel.
एनडीए सांसदों के दल में शामिल अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की।
We personally feel that a sitting Supreme Court judge must look into this. There should be a free and fair probe by the sitting Supreme Court judge and let the truth come out. What were the shortcomings at the end of the organizers? What was the fault of the officials in the state government?
और अंत में चर्चा व्यापार जगत की। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच भारत अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। 4 यूरोपीय देशों के समूह EFTA के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता आज से प्रभावी हो जाएगा। EFTA यानी यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ में आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और लिक्टेनस्टिन शामिल हैं। दोनों पक्षों के बीच समझौते को लेकर पिछले साल सहमति बनी थी। इस समझौते से भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आने की संभावना है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।